सी इंडिया बोल, तारीख 10 नवंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की तैयारी में है गुजरात सरकार। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। शहरों और जगहों के नाम बदलने वाले सरकारों के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इंडिया बोल में चर्चा होगी आज इसी विषय पर। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंद सहाय। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। श्रीलंका की सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी यूएनपी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के संसद भंग करने के फैसले को अदालत में चुनौती देगी। सांसद मंगला समरवीरा ने राष्ट्रपति को ऐसा निरंकुश शासक बताया जो मंडेला बनने का वादा करके सत्ता में आया मगर मुगाबे बन गया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले महीने श्रीलंका में उस समय राजनीतिक संकट पैदा हो गया जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस बैठक में रक्षा खर्च को लेकर उठे विवाद पर सफाई देने की कोशिश की है। पहले विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम से पहले ट्रंप ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका पर बोझ घटाने के लिए अन्य देशों को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि मैक्रों का यूरोपीय देशों से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता घटाने की अपील अपमानजनक है। पेरिस में मैक्रों के बगल में बैठे ट्रंप ने कहा,
We want to help Europe, but it has to be fair. Right now, the burden sharing has been largely on the United States.
हम यूरोप की मदद करना चाहते हैं, मगर इसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अभी तक ज्यादातर भार अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, और इस बात को राष्ट्रपति मैक्रों भी समझते हैं। हम मदद करना चाहते हैं, मगर अच्छी बात यही होगी कि अन्य देशों की भागीदारी बराबर रहे। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस का कहना है कि मेलबर्न में चाकू से हुए हमले में एक शख्स की हत्या करने और एक अन्य को जख्मी करने वाला हमलावर इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित था, मगर उसका संगठन से सीधा वास्ता नहीं था। ये संदिग्ध हमलावर सोमालिया से आया एक प्रवासी है। उसने गैस सिलेंडरों से भरी एक कार में भी आग लगा दी थी। बाद में पुलिस की गोली से उसकी भी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस के कार्यकारी डेप्यूटी कमिश्नर इयान मैकार्टनी ने कहा,
I think it's fair to say he was inspired. He was radicalized. Obviously, the
मुझे लगता है कि ये कहना ठीक होगा कि उसे प्रेरणा मिली थी। खिलाफत के उदय और इंटरनेट पर मौजूद अन्य प्रोपेगेंडा से वो कट्टरपंथी हो गया था। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि वो किसी तरह से सीधे किसी संगठन के संपर्क में था। हम कह रहे हैं कि उसने प्रेरणा जरूर ली थी। ये थे ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस के कार्यकारी डिप्टी कमिश्नर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया ने 2 हफ्ते पहले हुए हवाई जहाज हादसे में लापता लोगों के शव ढूंढने का अभियान खत्म कर दिया है। इस हादसे में 189 लोगों की मौत हो गई थी और अब तक 79 मृतकों के शव मिल चुके हैं। बचाव अभियान के प्रमुख ने कहा कि अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां तलाश न की गई हो। हालांकि कॉकपिट फ्लाइट रिकॉर्डर की तलाश अभी जारी रहेगी। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि लॉयन एयर का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कैसे हादसे का शिकार हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने कहा है कि शुक्रवार को तुर्की के हथियार डिपो में हुए धमाके में 7 सैनिकों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हक्कारी प्रांत के सैन्य अड्डे में गलती से तोप का गोला फट गया था। जहां ये घटना हुई वहां तुर्की की सीमा ईरान और इराक से लगती है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इससे पहले कि आज चर्चा का आरंभ करें, सुनिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं।
नए साल में अहमदाबाद का नाम कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लीगली सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने की तैयारी। और अब सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को।
अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे, और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा।
शहरों के नाम बदलने के मुद्दे पर श्रोताओं को चर्चा में शामिल करेंगे। इससे पहले स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय आपसे जानना चाहेंगे
जी,
शहरों के नाम बदलने की इस कवायद को आप कैसे देखते हैं?
मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। इसके दो कारण हैं। आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, नाम से क्या होता है, बात तो तब बनती है जब काम बोलता है, पहला। दूसरी बात यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है रामपुर, जिसकी मॉडर्न रामपुर की स्थापना 1775 में फैजुल्ला खान नवाब साहब थे, उन्होंने किया था। आज तक नाम नहीं बदला। अयोध्या का नाम ये नहीं बदल रहे हैं। अयोध्या के प्रतीक राम के नाम पे वहाँ रामपुर है, और वहाँ की आबादी जान के आश्चर्यचकित आप रह जाएंगे, 70.5% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन नाम तो नहीं बदल रहा है। हाँ, वहाँ के आजम खान चर्चा में आते रहे हैं, और वहीं के मुंबईया कलाकार प्राण साहब की परवरिश भी उसी रामपुर में हुई है। कहने का मतलब, यह गंगा जमुनी तहजीब एक चीज़ है जो कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। मैं तो इसका वोटरी हूँ कि यह कंपोजिट कल्चर, इकबाल ने बड़ा सुंदर कहा कि यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही एका है, और इसको बचाए रखना चाहिए। यह मेरा लेकिन निजी व्यू है।
अंबिकानंद सहाय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आगे अगले आधे घंटे तक स्टूडियो में बने रहेंगे, चर्चा को हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले शीशे के उस पार बैठकर स्टूडियो की कमान संभाल रहे शाकिर आलम इशारा कर रहे हैं कि श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कीजिए। चलिए देखते हैं आज इंडिया बोल में पहले श्रोता कौन है हमारे साथ। हेलो।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ, मैं फरहाना रियाज बोल रही हूँ।
फरहाना रियाज, कहाँ से बोल रही हैं आप?
हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं।
गाजियाबाद से बोल रही हैं आप, सुन रही हैं हमें, जो चर्चा का विषय है आप सुन रही थी हमें। क्या लगता है आपको कि क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है जब आप ये सुनती हैं कि किसी शहर का नाम बदला जा रहा है?
जब भी ये देखा गया है, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो अब तक जो नाम बदले गए हैं, जिस भी राज्य से बदले गए हैं या जिस राज्य में बदलने का विचार किया जा रहा है, अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा ही है। जैसे कि हमने देखा 2014 में लोकसभा 2014 में जब केंद्र में सत्ता ये भाजपा पार्टी आई थी, तो विकास के बहुत बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए थे, लेकिन क्या हो रहा है कि अब लास्ट तक आप जाते हैं ये जो भाजपा है अपना विकास के दावों में बुरी तरह फेल हो चुकी है। तो हमें इनका यही मेन मकसद है, चाहे इसके बारे में राजनेता कुछ भी कहें, कुछ भी वजह बताएं, लेकिन इनका असल मकसद राजनीतिक होता है। और इनको लगता है कि किसी खास शहर का नाम बदलकर एक विशेष संप्रदाय को ये खुश कर सकते हैं, और इसी बहाने जो है जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा सकता है। मेरा मानना है कि अगर नाम बदलने से अगर कुछ विकास होता है तो जरूर बदलिए, लेकिन नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता। इनका असल मकसद है जनता को भुखमरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो आम जनता इन मुद्दों पर एक ही होती है, लेकिन जैसे नाम बदलने की राजनीति होती है तो जनता आपस में बढ़ जाती है। इनका मकसद है कि आप देखिए राम मंदिर मुद्दे पर जो है बिल्कुल इनकी नाकामी नजर आ रही है, तो अपने हिंदू मत, अपने जो बहुसंख्यक वो वोट है उसको रोकने की कोशिश करने हैं, और ये मुस्लिम नाम वाले शहरों का नाम बदल बदल कर जो है ये खास संप्रदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है और अपने वोटर को बनाए रखना है।
फरहाना रियाज, आपका ये पहली दफा फोन लगा है बीबीसी इंडिया बोल में, हम आपसे आग्रह करेंगे आगे भी कार्यक्रम में शामिल हो, इसी तरह शामिल होइए और अपनी बात इसी तरह तर्कों के साथ रखिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे श्रोता को हमसे जोड़िए। हेलो।
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ, मैं निकिता बोल रही हूँ।
निकिता कहाँ से बोल रही हैं आप?
मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ।
अहमदाबाद गुजरात से निकिता, हो सकता है कि अगले साल जब आपसे दोबारा बात करें तो हम कहें कि कर्णावती से बोल रही हैं निकिता, हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपके शहर का नाम बदलने की योजना पर विचार हो रहा है, अहमदाबाद की वासी होने के नाते आपको क्या लगता है, कैसे आप इसको देखती हैं?
मैं देखती हूँ कि अहमदाबाद कोई एक सिटी का नाम नहीं है, अहमदाबाद एक इमोशंस के साथ जुड़ा है। यहाँ पे हर लोग ऐसा बोलते कि मैं एक अहमदाबादी हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलते कि मैं अहमदाबाद का हिंदू हूँ या अहमदाबाद का मुस्लिम हूँ। तो अहमदाबाद का नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद एक हेरिटेज सिटी माना गया है और अहमदाबाद के नाम में भी हेरिटेज है। तो मेरे ख्याल से अहमदाबाद नाम चेंज नहीं करना चाहिए।
अच्छा, और निकिता ये बताइए कि जो भारत के बाकी शहरों में जिस तरह से अयोध्या और मुगल सराय और इलाहाबाद ये जो नाम बदले जा रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं आप?
मेरा तो ये मानना है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, अगर उनको कुछ चेंजेस ही चाहिए हमारे देश में तो वहाँ के शहर वालों को जाके पूछे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चेंजेस चाहिए आपके शहर में, और वो चेंजेस करवाए, ना कि नाम को चेंजेस करवाए। क्योंकि नाम, अगर मान लीजिए मेरा नाम अभी निकिता है और मेरे फादर ऐसा सोच रहे हैं कि तुमने इस अभी तक कुछ किया नहीं तो मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ तो आगे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए जो चेंजेस एक्चुअल में लोगों को चाहिए वो करवाइए, ना कि नाम चेंज करवाइए।
बहुत अच्छा लगा निकिता आपसे बात करके, आगे भी हमें इसी तरह कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी भागीदारी दर्ज कराइए। अंबिकानंद जी, एक और श्रोता को हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते
जरूर,
हैं
जरूर।
उसके बाद हम आपके पास आते हैं। अगले श्रोता को जोड़िए शाकिर भाई हमसे। जी, कौन बोल रहे हैं?
जी, मैं आभा द्विवेदी, पूर्व पार्षद प्रयागराज से बोल रही हूँ।
वाह, प्रयागराज जो कल तक इलाहाबाद था, अब कैसा लग रहा है आभा जी आपको?
अच्छा लग रहा है, और दो पक्ष है मेरे पास, और ये जो नाम परिवर्तन का मामला है ये कोई आज से नहीं हो रहा है, बहुत पुराने समय से हो रहा है और पहले भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं। और इलाहाबाद वैसे इतने वर्षों से इलाहाबाद इलाहाबाद ही हो रहा है, लेकिन आप देखिए तो जो हम लोग के धर्म ग्रंथ में है और बहुत प्राचीन समय पहले प्रयागराज ही था इलाहाबाद का नाम, तो कभी कभी बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि अब हम फिर अपने पुराने वास्तविक नाम की ओर लौटे हैं, अच्छा लगता है सुनने में।
ये बताइए आबाजी कि आप पुराने नाम की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर चीजें बदल रही हैं नाम बदलने की वजह से?
वही हमने कहा कि इसका एक दूसरा भी पक्ष है कि नाम परिवर्तन जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं कर रहे हैं तो कुछ जरूर ऐसी तार्किक परिस्थिति होगी, लेकिन जो पैसे जो धन इसमें खर्च हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी धनराशि खर्च हो रही है, इससे जो है हमारे जो समाज के हैं, हमारे देश की बहुत सी और भी चीजें हैं जिनको सिस्टम पे लाया जा सकता है। तो दूसरा पक्ष ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा धनराशि आ रही है और अभी तो नाम बदले ही गए हैं, तो अभी आगे ये देखते हैं कि पटल पे क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, लेकिन अभी तो अभी अभी नाम परिवर्तित किया गया है, आगे देखना है हम लोग को इस विषय पे।
आभा द्विवेदी प्रयागराज से थी हमारे साथ और लौट रहे हैं स्टूडियो, अगले कॉलर के पास जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अंबिकानंद जी,
जी
ये जो नाम बदले जा रहे हैं इसके पीछे असल मंशा मूल विचार क्या नजर आता है आपको? शहर को नई पहचान देना चाहते हैं?
पहचान तो अभी बरसों लगेंगे, पुरानी पहचान कायम रहेगी, लाख कोशिश कीजिए आप, लेकिन जहन में जनता के इलाहाबाद इज इलाहाबाद, ठीक है ना, उसी तरह फैजाबाद, बहुत से लोग बहुत اچھے خوش مزاج ہو کر فیض آباد بیگم اختر کو یاد کرتے ہیں تو ذہن میں جو تصویر بسی ہوئی ہے اس کو ہٹنے میں وقت لگتا ہے. لیکن آپ کا جو مول پرشن ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اس میں آپ نے فرزانہ جی کو سنا, نکتا کو سنا, آبھا جی کو بھی سنا کہ اسے صرف نام ہی مہتوپورن نہیں ہے, کام بولے گا, کام کریے. اب دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں سبری مالا سے
کیرل,
کیرل سے اور اتر پردیش تک, اتر دکشن پورب پشچم سب کور ہو گیا. آپ نے گجرات کے مکھیہ منتری کو سنایا, تو ایک ہی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھیے اب دوبارہ سپنا دکھلانا بہت مشکل ہے اور حساب کام کا دینا پڑے گا. جہاں رولنگ پارٹی کچھ کمزور نظر آتی ہے تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹرک ہے کہ ریلیجیس لائن میں پولرائزیشن کی پریاس کی جائے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اتر سے دکشن ہر جگہ وہی ہو رہا ہے. تو یہ نام کرن کا بدلاؤ اس ایک بڑے اسٹریٹجی کا حصہ مجھے تو دکھائی دیتا ہے.
امبیکا نند جی ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا جواب ہم اگلے کالر سے بات کرنے کے بعد آپ سے جاننا چاہیں گے. وہ سوال یہ کہ کیا یہ جو نام بدلنے کی رڑنیتی ہے جسے آپ یدی ووٹوں سے جوڑیں تو کیا اس سے بی جے پی کو ووٹ کے معاملے میں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, اس پہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. پہلے اگلے کالر کو ہم کاریکرم میں شامل کر لیتے ہیں. ہلو
جی, ہلو
جی, کون بول رہے ہیں؟
جی میرا نام سنجیو کمار ہے, بہار سے.
سنجیو کمار,
سنجیو سونی جی.
جی نمستے سنجیو بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں؟
بہار سے, کھگڑیا ضلع.
کھگڑیا ضلع سے. تو یہ بتایا سنجیو بھائی کہ نام جو بدل رہے ہیں جس طرح سے شہروں کے جگہوں سے جگہوں کے الگ الگ راجیوں میں, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے سندیپ سونی جی, یوگی جی تو کوئی وکاس کا کام کر نہیں رہے ہیں, یہاں تک کہ بنا ہوا برج بھی ٹوٹ رہا ہے. انہیں شکشک بھرتی کے لیے جو شکشک نہیں مل رہا ہے, اپنے ناکامی کو چھپانے کے لیے بھاونا والی راجنیتی کا کھیل رہے ہیں. جگہوں کے نام بدل دینے سے کیا پراپت ہو جائے گا؟ اب کا نام گھوڑا رکھ دینے سے, ہلو
جی جی
جی, گدھا کا نام گھوڑا رکھ دینے سے گھوڑا جیسا وکاس نہیں ہو جائے گا گدھا کا. اب کسی کا نام نیم سکھ رکھ دیں تو وہ انڈا نہیں بن جائے گا. میں انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوگی جی ہندوؤں کی بھاوناؤں کی راجنیتی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس سے ہندوؤں کے جیون میں کچھ ہونے جانے سمجھ جانے والا نہیں ہے اور کوئی وکاس نہیں. جی
بہت شکریہ سنجیو بھائی, بہار سے کھگڑیا سے ہم سے جڑے تھے. اور مجھے امبیکا نند جی یاد آتا ہے, بہت آپ کو بھی یاد ہے یہ, کہ شہروں کے نام کوئی بی جے پی کی سرکار ہی نہیں بدل رہی ہے, اس سے پہلے کانگریس نے بدلے, بہوجن سماج پارٹی نے بدلے اتر پردیش میں, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ شہروں کے نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بدلے جا رہے ہیں, لیکن شاید ہلا گلا اس بار زیادہ ہو رہا ہے.
دیکھیے آپ نے جو بریک میں جانے سے پہلے یہ میرے سے سوال کیا تھا اور ابھی جو سوال کر رہے ہیں, دونوں جڑا ہوا ہے, دونوں جڑا ہوا ہے, بہت مہتوپورن ہے. آپ نے کہا کانگریس نے بھی بہت سے نام بدلے تھے, بسپا نے بھی بدلے تھے, تو ہم نے آپ نے دیکھا کانگریس کا بھی صفایا ہو گیا اور بسپا کا بھی صفایا ہو گیا, اب یہ بھاجپا والے نام بدل رہے ہیں. نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے بھارت کی راجنیتی کی ایک سچائی ہے سونی جی, اس کو مان لیجیے کہ 1952 سے آج تک کبھی بھی کسی راجنیتک دل کو 50% سے زیادہ ووٹ اس دیش میں نہیں آیا ہے, چاہے وہ جواہر لال نہرو رہے ہوں یا جے پرکاش نارائن کے نیتتو میں آندولن رہا ہو, کبھی نہیں آیا کسی کو. نریندر مودی جی کو اس تلنا میں تو بہت کم آیا. خیر اس سے لابھ ہوگا کہ نہیں بھاجپا کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ یہ لابھ ہانی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں جس دیش میں ایسنشلی جنتا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ پروو ہو رہا ہے 1952 سے, تو اگر گٹھ بندھن سارتھک بنے گا تو بھاجپا ہار جائے گی. اس میں چاہے رام مندر کو بیچ میں لائے یا شہروں کا نام بدلے, کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, لیکن وپکشی ووٹ اگر بٹیں گے تو بھاجپا پھر جیتے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جی
امبیکا نند جی میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, شروتاؤں کو کاریکرم میں شامل کریں گے. اس سے پہلے بی بی سی ہندی کے فیس بک پنے سے میں دو ٹپنیاں لیتا چلوں. سمن کمار سنگھ لکھتے ہیں کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہونے والا, 2019 کے لوک سبھا چناؤ آ رہے ہیں, یہ اس سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. اویناش کمار سنگھ لکھتے ہیں کہ نام بدلنے سے یوواؤں کو روزگار یدی ملتا ہے تو मस्जिद का नाम भी मंदिर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोजगार मिलना चाहिए। तबरेज आलम लिखते हैं कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने में लगी है। अंबिकानंद जी,
जी
सवाल फिर छोड़ के जाऊंगा आपके पास
जी,
क्या वाकई अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ये नया शगुफा छोड़ा है सरकार ने, ताकि चीजें दाएं बाएं हो जाएं, ध्यान हट जाए? लौटेंगे इस सवाल पर, अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो
सर, नमस्कार सर।
जी नमस्ते
सर, मैं यमुना हरियाणा से डॉक्टर मुकुल बोल रहा हूँ। मैं
डॉक्टर मुकुल हरियाणा से, मुझे लगता है दूसरी बार फोन लगा है आपका।
नहीं सर, फर्स्ट टाइम फोन लगा।
फर्स्ट टाइम फोन लगा है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है।
मेरे फादर भी सुना करते थे बीबीसी, मैं उनका सुनता था पहले, फिर नोटबंदी में मैंने बीबीसी को दोबारा कंटिन्यू करा सुनना।
अरे
नोट
बंद हुए और आपने हमें सुनना दोबारा शुरू कर दिया।
सर उस समय दोबारा मैंने बीबीसी ज्वाइन किया। मैंने दो बातें कहना चाहूंगा, ये जो नाम बदलने का जो प्रचलन है, जो शासक जो पावर में रहा है उसने पहले भी करा है ये बात। और दूसरी बात पर सर ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की थी पोलराइजेशन की, जो बात करी है आपने, उसमें हिंदू की तरफ ये जो जा रहा है इस समय, इसलिए शायद सभी को बहुत परेशानी हो रही है। पहले जो भी और जाति हैं उनके नाम पे जो नाम रखे गए हैं उसके दौरान किसी को इतनी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू को हिंदू कहना बहुत बड़ा पाप है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और बीबीसी भी मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ, हालांकि बीबीसी बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड लोग इसमें काम करते हैं, बट फिर भी पता नहीं कहाँ पर कोई शिकायत है कहीं ना कहीं।
क्या क्या शिकायत एक बार दोहराएं आप
सर। शिकायत यही है ना कि इसमें जो पोलराइजेशन, जो आपने शब्द यूज करा ना आपने, उसमें जो भी मुस्लिम जो नाम रखे पहले, उसमें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। अब ये जो भाजपा जो पार्टी आई है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा आधार था, बेस था, जहां हमारा जो हमारे पुराने नाम थे उन नाम को रख रही है भाजपा, तो उससे बहुत आपत्ति जो बुद्धिजीवी तबका है जिसमें बीबीसी भी आता है, उनको बहुत आपत्ति हो रही है उस चीज से जो आपने।
हमारे हरियाणा वाले श्रोता एक बार अपना नाम बता दें प्लीज।
डॉक्टर मुकुल बोल रहा हूँ मैं।
डॉक्टर मुकुल मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बीबीसी बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, हम किसी की पैरवी नहीं करते, और वही कहते हैं, वही आप सुन पा रहे हैं हमारे मंच से, जो विश्लेषक जो ज़मीन पर देख रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, जो श्रोता भारत के अलग अलग हिस्सों से फ़ोन कर रहे हैं उनका मंच है, वो कह रहे हैं और वो बात कह रहे हैं जो उन्हें लगती है। तो इसलिए हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, ये किसी का पक्ष लेने वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर मुकुल साहब, आगे भी आप फ़ोन करेंगे, मेरे ये कहने के बावजूद फ़ोन करना बंद नहीं करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। लौट रहा हूँ स्टूडियो में मौजूद अपने वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय साहब के पास। ये जो भ्रष्टाचार, विकास, रोज़गार, जैसा कि कई श्रोता कह रहे थे और फेसबुक पे भी हम पोस्ट पढ़ रहे हैं हमारे, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या इन इस तरह से, यदि मान भी लिया जाए कि कोई सरकार या सरकारें असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो क्या सरकारों को फ़ायदा होता है, पब्लिक से ध्यान भटकता है इन चीज़ों का असल मुद्दों से?
देखिए, मुझे जनता की कलेक्टिव विजडम पे भरोसा है, और ऐसा नहीं है कि जनता सब समझती नहीं है। अगर नहीं समझती होती तो 77 में राज नारायण जी इंदिरा गांधी को गढ़ में, रायबरेली में नहीं हरा पाते। तो जनता सब समझती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इलाहाबाद का नाम या अयोध्या का नाम बदलती है, इससे उनकी जो अपेक्षा है वो पूरी होती है कि नहीं, ये तो 2019 का चुनाव अब बताएगा। लेकिन जनमानस में ये भावना घर करती जा रही। देखिए, राजनीति परसेप्शन से चलती है। योगी जी के हृदय में बहुत सा कल्याण जनता के लिए होगा, लेकिन परसेप्शन ये है कि काम उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ये सब, देखिए, बहुत लुभावन चीज़ें हैं। आप जब अयोध्या, राम जी को कौन नहीं पसंद करेगा, पूजा कौन नहीं करता है, आप अयोध्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो ये एक माहौल तो बनता है। तो परसेप्शन ये है कि ये माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि उन नाकामियों को छिपाया जा सके। जी
साहिद साहब, एक और टिप्पणी फेसबुक से, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से देवराज वर्मा लिखते हैं कि भारत सरकार को उन तमाम नामों निशान तक को मिटा देना चाहिए जो गुलामी के प्रतीक हैं। इसमें उन सभी शहरों के नाम भी शामिल हैं जिनका असली नाम हटाकर फिरंगी या मुगलों के नाम पर रख दिया गया था। ये सहमत हैं। संजय यादव लिखते हैं कि करना है तो कुछ काम करें, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये उनकी अपनी राय है। गजेंद्र दुबे लिख रहे हैं कि जो भी कर रही है सरकार बहुत अच्छा है, हम सरकार के काम की सराहना करते हैं। अगले श्रोता के पास चलते जी। हैं जी, कौन बोल रहे हैं, कौन जुड़ गए हमसे इस समय? हेलो,
हाँ मैत्री जी बोल।
मैत्री, आप कहाँ से बोल रही हैं?
मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ।
अहमदाबाद से आप हमारी दूसरी कॉलर हैं आज। हाँ। आपके शहर का भी नाम बदलने का विचार हो रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी?
मैं तो ऐसा बोलूंगी कि 10वीं सदी में जो राजा कर्णदेव सोलंकी थे, वो उन्होंने आसावल नगर जीत के कर्णावती शहर की स्थापना की थी
जी।
और अहमद शाह बादशाह 1411 सदी में अहमदाबाद शहर वसावी तू, और उससे भी 10वीं सदी में कर्णदेव सोलंकी वसावी तुझे एक कर्णावती नगर तरीके संस्कृति ने साथ में जुड़ाया था।
ठीक है, आपका शहर का ऐतिहासिक आपने बता दिया कि क्या संबंध रहा, संपर्क टूट गया लगता है हमें उनसे, ये अपनी बात पूरी तरह से रख नहीं पाई, संपर्क टूट गया है इनसे। अगले कॉलर के पास चलते हैं हम। हेलो,
रोहित पांडे बोल रहा हूँ सर, जयपुर से।
पांडे जी, जयपुर से बहुत स्वागत है आपका, कहें क्या सोचते हैं आप?
मैं ये सोचता हूँ कि भाजपा जो है वो हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रयास कर रही है, और जितने भी मुस्लिम नाम से जो शहर है केवल उनके ही नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि एक तो संविधान में जो पंथ निरपेक्षता का जो दिया हुआ है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो उस पर भी कुठाराघात हो रहा है, और भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, और जो प्राचीन समय में जो मुस्लिमों ने जो नाम लिखित रखे थे उनको हटाकर भारत में पुनः भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।
पांडे जी की इस बात से जोड़ के एक आखिरी सवाल सहाय साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार यदि किसी शहर का नाम बदलती है, कोई फैसला करती भी है, सरकार का हक है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है
जी,
आपत्ति की क्या बात है इसमें फिर?
आपत्ति की सिर्फ एक बात है जो आपने सब कॉलर को सुना, बहुतायत इसी विचारधारा की थी कि क्यों बदल रहे हैं, नाखुश थे लोग। मैं भी मानता हूं इस बात को, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा राजनैतिक। अभी आप एक कॉलर को अहमदाबाद से आपने सुना, इतिहास का बहुत सुंदर ज्ञान था, और राजा कर्णदेव की चर्चा हुई, और 14वीं शताब्दी में अहमद की चर्चा हुई, और उसके नाम पे अहमदाबाद बना। नरेंद्र मोदी जी इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, तो उन्होंने नाम नहीं बदला। अब 2019 जब 6 महीने दे रहे चुनाव, तो बदला जा रहा है, आपत्ति यहां पे है जी।
तो इस पे सरकार का भी तो विवेक है, सरकार
अच्छा उसी वक्त विवेक जागता है जब चुनाव सर पे हो,
चुनाव सर पे हो। और इसी से मिलती जुलती बात हमारे एक और पाठक श्रोता सद्दाम साहब लिख रहे हैं कि देश बदल नहीं पाए तो कुछ तो बदलना ही है, देश ना सही जगहों के नाम ही बदल देते हैं। एक और पाठक श्रोता आनंद आर्या लिखते हैं कि एक तरह से नाम बदलना गलत नहीं है, क्योंकि जो वास्तविकता है उसे मौजूदा युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, लेकिन एक सत्य ये भी है कि अगर हम नाम बदलने में ही लगे रहे तो बाकी ज़रूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे
जी।
अंबिकानंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, समय इजाज़त नहीं दे रहा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाने में मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
और शुक्रिया दुनिया भर में सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का, माफी हमेशा की तरह उन तमाम श्रोताओं से जिन्हें हम चाहकर भी चर्चा में आज शामिल नहीं कर सके। अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के साथ हाजिर होंगे। हमें आपसे जोड़ रहे थे आज इस कार्यक्रम में शाकिर आलम, अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात, तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।